श्री साईराम साईं वट्टा अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री साई राम। युगादि एक ऐसा त्योहार इसको हम धूमधाम से मनाते हैं। युगादि को कई लोग उगादि भी कहते हैं। युग आदि अर्थात जहां से युग आरंभ हुआ हो, बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा। ये बात हो रही है कलयुग की। हमारे शास्त्र कहते हैं चार युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कहते हैं कलयुग का आरंभ हुआ था, जो वर्ष का नाम था प्रमादी, मास का नाम था श्रावण, पक्ष का नाम था बहुला और तिथि थी अष्टमी। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार कलयुग का आरंभ हुआ था 20 फरवरी 3102 वर्ष ईसा से पहले, अर्थात 20th ऑफ फरवरी 3102 बीसी बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब 5000 साल तक ज्यादा हो चुके हैं कलयुग को आरंभ हुए। ये बात हो रही है युग की। एक और चीज होती है, हम कहते हैं हिंदू न्यू ईयर या संवत्सर, संवत्सर। सम का अर्थ होता है एक जैसा, एक प्रकार से। वत्सर जो सब में वास करता हो, जो सभी में वास करता हो, द वन हु ड्वेल्स इन एवरीथिंग। हर चीज के अंदर क्या चीज बात करती है, हम कहते हैं आत्मा या परमात्मा। तो संवत्सर का अर्थ है परमात्मा। हम कह रहे हैं, वापस लौट के जा रहे हैं युग की तरफ। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, कॉस्मस इटसेल्फ इज द फॉर्म ऑफ डिवाइन। अर्थात सारा ब्रह्मांड जो है ये एक दिव्य है, डिवाइन है। अर्थात सारे ब्रह्मांड में जो चीज समाई हुई है वो है परमात्मा। अब ये युग जो है भैया, हम कह रहे हैं कि 5000 साल से ज्यादा हो गए हैं आरंभ हुए, कलयुग की बात कर रहे हैं। ये कलयुग कितना लंबा होगा, कितना लंबा होगा जानते हैं आप? शास्त्र कहता है 432,000 वर्ष, 432,000 years। इतना लंबा होगा कलयुग। अभी केवल 5000 कुछ वर्ष हुए हैं। इससे पहले था द्वापर युग। कहते हैं द्वापर युग जो था वो कलयुग से दोगुना था, डबल था। अर्थात 864,000 years लॉन्ग, 864,000 वर्ष लंबा। द्वापर से पहले था त्रेता युग, जो कलयुग से तीन गुना ज्यादा, अर्थात 1296,000 वर्ष और 1.296 million years लॉन्ग। त्रेता से पहले था सत्य युग, जो कलयुग से चार गुना ज्यादा लंबा था, अर्थात 1728,000 वर्ष, अर्थात 1728,000 वर्ष और 1.728 million years लॉन्ग। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनकी अवधि को, इस समय की लंबाई को सब जमा कर दें, ये बन जाता है 43,20,000 वर्ष, अर्थात 4.32 million years। हम कह रहे हैं ये सारे युग इकट्ठे कर दिए जाएं, उनकी अवधि को जोड़ दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष बन जाते हैं। इसे बोला जाता है एक दिव्य युग। हजार दिव्य युग हो जाएं, इसको हजार से गुना कर दें, हजार दिव्य युग जो है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इस प्रकार से 100 ब्रह्मा के वर्ष जो होते हैं वो एक कल्प होता है। इस प्रकार से गणना चलती रहती है। लेकिन हम जो ये बात करना चाह रहे हैं, हम दो बातों पे ध्यान देना चाह रहे हैं, एक युग, दूसरा संवत्सर। कलयुग आरंभ हुआ महाभारत के बाद की बात है, भगवान कृष्ण के शरीर छोड़ने की बात है। जरा विचार करें, हम वापस लौट के जा रहे हैं संवत्सर की ओर, हिंदू न्यू ईयर। वैसे तो हम भारतवर्ष में कई न्यू ईयर बनाते हैं, नववर्ष, जैसे दीपावली के बाद भी नूतन वर्ष होता है। कई लोग कहते हैं बैसाखी से 13 अप्रैल से जो एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष गणना के अनुसार नया वर्ष होता है, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है 13-14 अप्रैल को। हिंदू न्यू ईयर की जब बात कर रहे हैं, जो उसका पहला महीना होता है, पहला मास होता है, उसका नाम है चैत्र मास। अब कहीं से तो नाम आया होगा ना, जब आप बच्चे को नाम देते हैं राम, इससे पहले भी किसी का नाम राम हुआ होगा ना, राम भगवान के ऊपर ही है ना, कहीं तो सुना होगा ना आपने। जब चैत्र नाम दिया गया, इस महीने का नाम दिया गया, महीने को नाम दिया गया, तो चैत्र कहां से आया? चैत्र का नाम जो है वो आया चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त शब्दों पे गौर कीजिए, जो गुप्त तरीके से चित्र लेता हो, चित्र करता है फोटोग्राफ, तस्वीर, गुप्त करता है हिडन। कभी आपने ध्यान दिया कि आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपके घर में एक बिल आ गया पुलिस की ओर से या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की ओर से, भाई आप इस दिन इस समय इस जगह पर आपकी गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी, पुलिस ने फोटो खींच ली, वहां हिडन कैमरा लगा हुआ था, और आपको बोलते हैं भैया आप ये बिल पे करो, फाइन पे करो, जुर्माना दो, अगर आप बात नहीं मानेंगे वो आपको फोटो लाकर दिखा देंगे, उस पर लिखा होगा डेट टाइम वेन्यू जहां पर भी हुआ है, कौन सी सड़क पे। जब हमारी पुलिस इतनी स्मार्ट हो सकती है, हिडन कैमरे लगा सकती है जगह जगह पे, तो आप ये नहीं सोचते कि भगवान के भी कहीं हिडन कैमरे होते होंगे कहीं ना कहीं? तो चित्रगुप्त जो है वो यमराज का अकाउंटेंट है, खजांची, आपका बही खाते का हिसाब रखता है वो। जब शरीर छोड़ने के बाद आत्मा यमराज के साथ या यमराज के दरबार में पहुंचती है, वहां पाप पुण्य का फैसला होता है, आपके बहीखाते खोले जाते हैं। ये चित्रगुप्त जी महाराज हैं जो सारा हिसाब किताब रख रहे हैं। अब चित्रगुप्त है कहां पर? चित्रगुप्त प्रत्येक मानव के भीतर बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है? आपके प्रत्येक कर्म का हिसाब किताब रख रहा है, आपकी प्रत्येक वाणी, प्रत्येक जो शब्द आपने बोले हैं उनका हिसाब रख रहा है। साथ साथ में केवल इतना भी नहीं, आपके भीतर जो विचार उठ रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके बावजूद डिस्पाइट ऑफ देम, जो भी आपके अंदर विचार उठते हैं उनका भी हिसाब किताब है। आप यूं समझिए डाटाबेस है जो 24 आवर्स द डे 7 डेज ए वीक आपके भीतर एक घड़ी चल रही है, क्लॉक चल रही है, प्रति क्षण वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उधर कल्पना कीजिए जब आप शरीर छोड़ के यमराज के दरबार में खड़े हैं चित्रगुप्त के सामने, वो आपके सारे रिकॉर्ड आपके सामने रख दें खोल के, हैरानी होगी आपको, हो सकता है आपको खराब लगे, हो सकता है आपको शर्म महसूस हो कि मेरे बावजूद भी मैं ऐसे काम करता था, मैं ऐसा सोचता था। इसलिए हिंदू मास में पहला महीना दिया गया चैत्र मास चित्रगुप्त के नाम पे, ताकि जब आप वर्ष का आरंभ कर रहे हैं सबसे पहले आप अपना बैलेंस चेक कीजिए, या एक प्रकार से आप अपने कर्मों का अपने विचारों का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, इम्पार्शियल इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। बात समझ रहे हैं आप? साल के आरंभ से पहले आप देखिए मैं कहां हूं, मैं हूं क्या, मैं क्या कर रहा हूं, तब आपको आगे चलने में थोड़ी आसानी रहेगी। वापस चलें युग की ओर। हमने बात की चार युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं भाई सत्य युग में किस प्रकार की पूजा आराधना या आध्यात्मिक साधनाएं की जाती थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या होती थी। सत्य युग में केवल ध्यान मात्र ही काफी था, लोग बैठ जाते थे। हाँ, इससे पहले एक बात बता दे, सत्य युग में मानव की उम्र होती थी 100,000 साल, 100,000 years। त्रेता युग में घट के रह गई 10,000 years, 10,000 वर्ष। द्वापर युग में रह गई 1,000 वर्ष और कलयुग में हो गई 100 years, 100 वर्ष। कोई 100 वर्ष का भी हो जाए वो बड़ी बात है आज के जमाने में। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है आदमी की उम्र थोड़ी कम होती जा रही है। तो हम कह रहे थे कि आध्यात्मिक साधनाएं क्या थी। जब किसी की उम्र 100,000 वर्ष की हो, 100,000 years किसी का लाइफ स्पैन हो, आयु हो, उस जमाने में लोग ध्यान में बैठते थे। और ध्यान में क्या बैठते थे, बैठे रहते थे वर्षों, बैठे रहते थे, तपस्या करें कितने हजार साल तपस्या कर लेते थे, बैठे रहते थे, माफ कीजिएगा तपस्या नहीं, ध्यान लगाते थे। क्योंकि त्रेता युग में आराधना का तरीका, साधना का तरीका बदल गया, वो हो गया तप। तप और ध्यान में फर्क है। तप में आप अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जैसे एक आदमी एक टांग पे खड़ा हुआ है, एक आदमी एक ही तरीके से बैठा हुआ है, दर्द से करार है लेकिन हिलेगा नहीं, अपने शरीर को पीड़ा देके काम हो रही है। जब द्वापर युग आया तो साधना का तरीका बदल गया, लोग अर्चना करने लग गए, रिचुअल करने लग गए। वो कलयुग में कहा जाता है कौन सी ऐसी तपस्या है, कौन सी ऐसी आराधना है जो आपके लिए सुगम हो, आसान हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतराहीन पारा। कहते हैं कलयुग में केवल नाम आधार ही काफी, नाम ही आधार है। द बेसिस ऑफ कलयुग, कलयुग इज नाम स्मरण, रिपीट हिज नेम। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतराहीन वारा। नाम स्मरण करने से, परमात्मा के नाम को बारंबार बोलने से ही आपकी नैया पार लग जाएगी। इसलिए भगवान बाबा ने बारंबार बोला नाम स्मरण, नाम स्मरण, नाम स्मरण। उठते जागते चलते फिरते परमात्मा का आप नाम लेते रहे। अब देखिए भगवान विष्णु के कितने अवतार आए हैं, हम कहते हैं 10 अवतार, लेकिन स्वामी ने कहा, भगवान बाबा ने कहा कि 2 अवतार जो है जो ज्यादा मीनिंगफुल है हमारे लिए, वो है राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम आए त्रेता युग में, कृष्ण आए द्वापर युग में, सत्य युग में भी आए थे, लेकिन त्रेता में वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार, भगवान विष्णु के 3 अवतार यहां आए हैं। 8वें अवतार से कृष्ण, कृष्ण द्वापर युग में आए, ठीक है जी। 9वें हम कहते हैं महात्मा बुद्ध को मानते हैं, लेकिन वामन अवतार से पहले मत्स्य अवतार से लेके वामन अवतार तक जितने अवतार हैं वो सारे सत्य युग में आए। राम थे सूर्यवंशी, सूर्य के वंश से आए थे। कृष्ण थे चंद्रवंशी, चंद्र के वंश से आए थे। आप जरा देखिए सीरीज ऑफ अवतार या सीक्वेंस ऑफ अवतार, हम केवल राम कृष्ण की बात कर रहे हैं अभी। राम सूर्य वंश से आए, सूर्य बुद्धि का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। और श्री कृष्ण चंद्रवंशी आए, चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन क्या है? बंडल ऑफ डिजायर्स। मन क्या है? विचारों की गुत्थी और कुछ नहीं है। मन क्या है? वासनाओं से भरा हुआ है। जन्म जन्मांतर की वासनाएं मन में कूट कूट के भरी हैं। हम चित बोलते हैं जिसको, जो मेमोरी है। लेकिन मन जब बोल माइंड बोलते हैं, एनकंपसेस दैट चित। कहते हैं पहले अगर बुद्धि की शुद्धि हो उसके बाद हम मन की शुद्धि कर सकते हैं, कि मन को सारी ऊर्जा सारी शक्ति बुद्धि से मिल रही है। वो अलग बात है, बुद्धि की बात मानता नहीं है मन, करता अपनी मनमानी है। तभी तो कहते हैं मनमानी कर रहे हैं। हम बोलते नहीं आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। कभी आप सोचा कभी आपने शब्द गौर किया मनमानी करना? जो मन में है वही कर रहे हैं। मन बहुत कुछ करना चाहता है, मन विचार नहीं करता ये सही है या गलत है। मन सोचता नहीं है इज इट राइट इज इट रॉन्ग। मन माइंड जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय। इसलिए भगवान ने बोला एंजॉय नहीं एंड जॉय। जब राम भगवान आए थे उस समय शत्रु देश के बाहर थे, और जो दिव्य लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जो धार्मिक लोग थे वो एक तरफ थे, जो अधर्म के रास्ते पे थे वो अलग तरफ थे। डिवाइन वन साइड, डेमन ऑन वन साइड। तो बड़ा आसान होता था जानना कि कौन देवता है कौन राक्षस है, कौन तो राक्षस को मानना बड़ा आसान काम था। तब भी भगवान राम शत्रु देश के बाहर था, भारत वर्ष लंका गया, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ वहां मारा गया लक्ष्मण द्वारा, और राष्ट्रों का वध हुआ। कृष्ण के जमाने में कहते हैं दिव्यता और राक्षसता, दिव्य और राक्षस, डिवाइन एंड डेमन दोनों जो थे परिवार में आ गए, एक ही शहर में आ गए, एक ही राज्य में आ गए, परिवार में आ गए। जैसे कि पांडव और कौरव, पांडव दिव्य हैं, कौरव शत्रु हैं, उनके परिवार के अंदर शत्रु रह रही है। तब भी आसान था जानना कि परिवार के अंदर भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, पांडवों ने कौरवों को मारा, और अन्य राक्षस में मारे गए जो परिवार में थे या राज्य के अंदर थे। अब कलयुग में थोड़ी स्थिति गंभीर हो गई, मोर कॉम्प्लिकेटेड मोर कॉम्प्लेक्स हो गई। राम के जमाने में सारे शत्रु देश के बाहर थे, कृष्ण के जमाने में परिवार में आ गए, कलयुग में प्रत्येक मानव के भीतर शत्रु आ गया। तभी कहा जाता है कलह युग, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, मां बेटी में झगड़ा, परिवार के अंदर झगड़ा, अपने आप पे झगड़ा, संसार के सामने कुछ हो रहे हैं, मन में कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, पता नहीं हम कर क्या रहे हैं। तो प्रत्येक मानव दूषित हो गया। किसी ने बोला भगवान बाबा से कि आपने राम अवतार में राष्ट्रों को मारा था, कृष्ण अवतार में आपने राष्ट्रों को मारा था, तो अब राक्षस नहीं मारोगे इस कलयुग अवतार में? स्वामी बोले थे भाई राम अवतार में दुश्मन देश के बाहर थे जैसा कहा गया आपको, कृष्ण अवतार में परिवार में आ गए थे, अब प्रत्येक आदमी के भीतर है, अगर हर आदमी को मारने लग जाए तो बचेगा कौन? इसलिए इस युग में मैं भक्तों को परिवर्तित करूंगा, आई विल ट्रांसफॉर्म देम, नॉट विद द बो एंड एरो, तीर कमान से नहीं, चक्र के द्वारा नहीं, डिस्कस के द्वारा नहीं, विद द वेपन ऑफ लव, उनका अस्त्र होगा प्रेम। कलयुग में तीन अवतार तो पक्के हैं, शिरडी साईं, सत्य साईं, प्रेमा साईं। अब आप विचार कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि राम कृष्ण उस जमाने में आए थे त्रेता द्वापर में, तो अब तो हमारे जमाने में नहीं आएंगे। ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब एक चीज पे और ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं 432,000 वर्ष का कलयुग है, पता नहीं आप दोबारा सत्य युग में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे कि एक दिन को अगर हम चार भाग में बांट दें शास्त्रों के अनुसार, सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक होता है सत्ययुग, उस समय धर्म चार टांगों पर खड़ा होता है। उसके बाद आता है त्रेता युग, दोपहर को 12 से शाम को 6 बजे तक। उसके बाद आता है द्वापर युग, धर्म दो टांगों पर खड़ा होता है, शाम को 6 से लेकर रात को 12 बजे तक। फिर आता है कलयुग, रात को 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक, केवल 4 घंटे के लिए, थैंक गॉड उस समय हम सो रहे होते हैं, इसे न जाने क्या कर जाते हैं। ये सारे युग जो हैं, अगर हम अपने भीतर खोजें, जिस दिन हम सोते हैं कि हम सत्य के रास्ते पे हैं, धर्म के रास्ते पे हैं, सोते नहीं है, होते हों, तो सत्य युग में पहुंच गए, हमारे अंदर कोई कलह नहीं है, सत्य युग में आ गए, हमारे अंदर कोई वासना नहीं है, सत्य युग में आ गए आप, हम केवल आंख बंद करें परमात्मा पर ध्यान लग जाए, सत्य युग में आ गए। लेकिन इस युग में परमात्मा तक पहुंचने के लिए, अपने चित्त की शुद्धि करने के लिए, अपने मन को क्लीन करने के लिए, मन को साफ करने के लिए साधना जो दी गई है वो है, एक तो है कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, अपने इंद्रियों पर सदैव नियंत्रण पाए रखना। दूसरा है नाम सिमरन, परमात्मा के नाम को जो आपके पसंद हो उसको बारंबार बोलते रहना, चाहे आप चुपचाप बैठे हो बैकग्राउंड में, मन के अंदर नाम चलता रहे राम 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 राम। तीसरा है हैव करेज एंड डिटर्मिनेशन, आपके अंदर साहस और दृढ़ता हो क्या, टू लिसन टू द इनर वॉइस, अपनी अंतर की वाणी सुनने की, एंड वॉक ऑन इट, एक्ट ऑन इट, उस पे चलिए, उसको अमल कीजिए एट ऑल टाइम, हर समय, हर वक्त, हर क्षण। इतना अगर आपने कर लिया, इसे बोलते हैं क्वांटम लीप, एकदम से आप उड़ेंगे वहां से और सदैव सत्य युग में पहुंच जाएंगे, हो सकता है आप संसार से मुक्त भी हो जाएं। विचार कीजिएगा, स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग करेज एंड डिटर्मिनेशन टू लिसन टू द इनर वॉइस एंड वॉकिंग ऑन इट एट ऑल टाइम्स। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने अंतर की वाणी को सुनने का साहस हो और आपको दृढ़ता हो कि उसको सुन के उसके रास्ते पर चलेंगे, अमल करेंगे। कंट्रोल ऑफ सेंसेस, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाएंगे, और नाम सिमरन, रिपीट हिज नेम, परमात्मा के नाम को प्रेम के साथ बारंबार बोलते जाएंगे, अपने मन को प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे, प्रेम से भर डालेंगे, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। जय श्री साईं राम।